बने मारीच को मारने के बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पंचवटी की कुटी में लौटे। कुटी में सीता को ना पाकर दोनों भाई कांप उठे। श्री राम का तो जैसे आंसुओं का बांध ही टूट गया। वो सीता का पता पूछते हुए बहुत दूर निकल गए। तभी अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। राम और लक्ष्मण आवाज की दिशा में बढ़ चले और तब उनकी दृष्टि घायल जटायु पर पड़ी।
गीतराज, आप यहां और इस दशा में, किसने की आपकी ये दशा?
श्री राम,
बोलिए गीतराज जटायु, ये अनहोनी कैसे हुई? आपका ये हाल किसने किया?
श्री राम, मैंने आपके भारिया सीता को रोते बिलखते देखा था। श्री राम,
पर क्यों, क्या हुआ था उन्हें?
लंकापति रावण उनका हरण करके ले जा रहा था। वो उसके बंधन से छूटना चाहती थी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया।
जानते हुए भी कि इस आकाश मार्ग में तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा, फिर भी तू अपने पति और उस लक्ष्मण को पुकार रही है।
दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति के साथ छल किया है। तू कायर है, कायर लोग ही पीछे से वार करते हैं। यदि तू मेरे स्वामी के सामने आता तेरी मृत्यु निश्चित थी।
किंतु अब तो तेरे उस पति की मृत्यु निश्चित है। वो स्वयं तुझे ढूंढता ढूंढता पागल हो जाएगा और अंत में तेरे वियोग में वो प्राण त्याग देगा।
मेरे स्वामी तुझ जैसे दुष्ट को अवश्य ढूंढ निकालेंगे, चाहे तू कहीं भी शरण ले ले। यदि तू पाताल में भी छिप जाएगा तो वो वहां भी पहुँच कर तेरा अंत करेंगे।
अरे तू और तेरा महान स्वामी, जब उस बेचारे को पता चलेगा कि तुझे लेकर कौन और कहां गया है, तभी तो ढूंढेगा मुझे।
तू इसकी चिंता मत कर पापी, इस वन के पेड़ पौधे और फूल पत्तियां सभी इस बात के साक्षी हैं कि लंका का नीच और अधम रावण श्री राम की पत्नी का हरण करके अपने राज्य में ले जा रहा है। हे वन के पुष्प, वृक्ष, पति को इस बात की सूचना देना कि वो मुझे शीघ्र ही यहाँ से छुड़ा ले जाए और इस दुष्ट रावण का वध कर दे।
देवी सीता की चीख पुकार सुनकर वन के अनगिनत प्राणी बाहर निकल आए। उन्हीं प्राणियों में से एक ऐसा प्राणी था जिसने रावण का मार्ग रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी।
अरे ये तो किसी नारी की पुकार है और इसकी ये कारण पुकार आकाश की ओर से आ रही है। सीता है, वो तो दुष्ट रावण इनका हरण करके लिए जा रहा है। मैं अभी बताता हूं इस दुष्ट को।
रुक जा रावण, मेरे होते हुए तू ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। शायद तू नहीं जानता कि जिन्हें तू बलपूर्वक ले जा रहा है वो श्रीराम की पत्नी जनक नंदिनी सीता है, और तुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि श्रीराम संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इंद्र और वरुण से भी बढ़कर पराक्रमी है।
पहले ये बता कि तू है कौन जो रावण से तर्क करने का साहस कर रहा है।
मैं हूँ श्रीराम भक्त, वरुण का पुत्र, गरुड़ राज कुल जटायु।
जटायु, तू राम की चाटुकारिता करने में अपना समय नष्ट मत कर जटायु। तू दशानन की शक्ति को नहीं जानता,
इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा हूं लंका नरेश कि तू जो कर रहा है वो अधर्म है। राजा का धर्म है स्त्रियों की रक्षा करना, और तू बलपूर्वक जनक नंदिनी का हरण कर ले जा रहा है। कैसा राजा है तू?
धर्म और नीति का उपदेश मुझे नहीं उस वनवासी राम को जाकर दे। तुझे नहीं पता?
मुझे सब पता है। मैं आज से नहीं तब से इस पृथ्वी को देख रहा हूँ जब तू जन्म भी नहीं था। मैं जानता हूँ कि श्री राम किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकते।
मेरी बहन शूर्पणखा
के बारे में मुझे मत बता पापी। अच्छा हो कि तू शूर्पणखा से पूछ ले कि कौन दोषी है। तेरा हित इसी में ही है कि सीता को छोड़ दे।
अरे जाकर किसी वृक्ष की खो में पड़ा रहे। अब इस स्त्री को लंका ले जाने से तू मुझे रोकेगा? वृद्ध जटायु,
मैं वृद्ध हूँ पर तेरे जैसे कायरों के लिए अब भी बहुत शक्ति है मुझमें।
सीते पुत्री, तू भय मत कर, मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप।
बूढ़े गिद्ध, युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है तू? ये ले दशानन का प्रहार।
श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम।
सुन वृद्ध जटायु, यदि उस वनवासी राम के आने तक तेरी सांसें चलती रहे तो बता देना उसे कि उसकी भार्या को हम उठा कर ले गए हैं, और वो ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले उसे।
और वो दुष्ट ऐसा कहते हुए जानकी को लिए आकाश मार्ग से चला गया। श्रीराम चला गया।
मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा जटायु। आपने हमारी सीता को बचाने के लिए जो किया उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकूंगा।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया, इसी क्षण उसका वध कर दूंगा।
ऐसा ही होगा लक्ष्मण, वो अपने अंत का आरंभ कर चुका है।
तो चलिए भैया, अब विलंब क्यों?
यदि वो लंका गया है तो हमें उसके साथ लंबा युद्ध करना होगा। लक्ष्मण,
मैं ये युद्ध क्षण भर में समाप्त कर दूंगा।
शत्रु को दुर्बल मत समझो लक्ष्मण, और फिर हमें लंका के मार्ग का ज्ञान भी तो नहीं है।
राम और लक्ष्मण अभी विचार ही कर रहे थे कि एक करुण पुकार उठी और उसी के साथ जटायु के प्राण चले गए। जटायु को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर श्री राम की पीड़ा और भी बढ़ गई। उनकी इच्छा हुई कि इसी क्षण रावण का सर्वनाश कर दें, पर वो जानते थे कि उनके सामने कठिनाइयों का विशाल सागर सीना ताने खड़ा है।
सिया हरण रावण उड़ी जावा, बीच मार्ग जटायु धाई, गिरा धरा खाए प्रहारा, गिरा धरा खाए प्रहारा, प्रभु काम आए गति पाई। रामायण।
मैं काल हूं। सीता के हरण की सूचना देने के बाद वृद्ध जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए। राम और लक्ष्मण बहुत दुखी थे। लक्ष्मण ने चिता तैयार की और श्री राम ने गीधराज के मृत शरीर को चिता पर रखकर वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए दाह क्रिया की, और इस तरह गीधराज जटायु परम धाम को प्राप्त हुए। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। अब उनकी चिंता थी कि रावण से सीता को कैसे मुक्त कराएं। मार्ग में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा,
अब लंका पर आक्रमण करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है लक्ष्मण।
परंतु आक्रमण करने के लिए सेना चाहिए भैया, हम सेना की व्यवस्था कैसे करेंगे? इस वन में कौन सी सेना हमारी सहायता करेगी?
इस समस्या का कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा लक्ष्मण। ये हमारे लिए ही नहीं रघुवंशियों के लिए भी चुनौती है, और हम इस स्थिति में है कि सेना बुलाना तो दूर, इस बात की सूचना हम अयोध्या तक भी नहीं पहुंचा सकते।
हाँ भैया, अयोध्या से सेना बुलाने की बात सोचना कदापि उचित नहीं है। इस सूचना से वहां सभी चिंतित हो जाएंगे।
ऐसी घड़ी में हमारा आत्मबल ही हमारा साथ देगा।
भैया आप कहें तो मैं अकेले ही रावण के पास जाऊं और रावण को दंडित करके भाभी सीता को उस दुष्ट के चंगुल से मुक्त कराऊं।
नहीं लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य मात्र सीता को मुक्त कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य राक्षसों की प्रवृत्ति को समाप्त करना है, उनके अत्याचारों का अंत करना है, और राक्षसों के अंत के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। अभी सूर्यास्त होने वाला है, हमें सबसे पहले कहीं विश्राम के लिए उचित स्थान देखना होगा।
इधर तो ना कोई कुटिया दिखाई दे रही है और ना ही कोई गांव। भैया आगे वन भी बहुत घना है और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है।
लक्ष्मण, इस अंधेरे के आगे ही हमें प्रकाश की किरण दिखाई देगी, और यही किरण हमारी आशाओं में भी रंग भरेगी। और क्या पता इन्हीं घने वनों में कहीं हमें जनक नंदिनी मिल जाए।
हाँ भैया, लेकिन हमें सावधान होकर आगे बढ़ना है, किसी समय कुछ भी हो सकता है।
संभल कर लक्ष्मण, लगता है आसपास कोई राक्षस है।
भैया अब मैं किसी भी राक्षस को जीवित नहीं जाने दूंगा। कौन है तुम्हारा भी? यदि साहस हो तो सामने आ। क्या कायरों की तरह छिप छिप कर गुर्रा रहा है?
लक्ष्मण तुम ठीक ही कह रहे हो, ये कोई मायावी राक्षस है जो अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है।
हाँ भैया, इसके लिए माया हरण अस्त्र का प्रयोग करना होगा। ले मायावी, अब तू कहीं भी छिप नहीं पाएगा। भैया आप कुछ देख रहे हैं?
हाँ लक्ष्मण, हाँ मैं पहली बार ऐसा राक्षस देख रहा हूँ जिसका सिर ही नहीं है, केवल धड़ और ऊपर कुछ भी नहीं।
मैं कबंद हूँ,
इसका मुंह तो इसके पेट में समाया हुआ है।
हाँ लक्ष्मण, तभी तो इसका नाम कबंद है।
आज तक मुझे चुनौती देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, अब तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है।
श्री राम और लक्ष्मण ने ऐसे विचित्र प्राणी को पहली बार देखा था। उसके रूप को देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, किंतु वो इतना भयानक था कि श्री राम भी पल भर के लिए सोच में पड़ गए।
भैया, ये तो आगे बढ़ रहा है।
ये अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है लक्ष्मण, लेकिन सावधान, इससे सावधान रहना।
आजा, आजा मानुष, आजा मानुष, मेरे पूजा पाश में आजा।
भैया बचिए, इसकी भाई तो विशाल रूप लेकर हमारी ओर बढ़ रही है। हे ईश्वर, क्या है ये?
हाँ लक्ष्मण, थोड़ा पीछे हटिए।
भैया प्रहार कीजिए, इस राक्षस ने तो मुझे जकड़ लिया है।
भय मत करो लक्ष्मण, मैं इसकी भुजाओं को ही काट देता हूँ।
तुमने तो मेरी भुजाएं ही उखाड़ दी। जय हो, जय हो, जय हो तुम्हारी, वीरों तुम्हारी जय हो। तुम दोनों कौन हो? मेरी भुजाओं को भी कोई काट कर मुझे मुक्ति दे सकता है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कभी।
कबंध, हम दोनों इक्ष्वाकु वंशज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये हमारे बड़े भैया राम हैं और मैं लक्ष्मण। हमारी भाभी सीता का कोई राक्षस अपहरण करके ले गया है, हम उन्हीं की खोज करने के लिए इस वन में आए थे। किंतु तुम कौन हो और अपनी भुजाओं के कटने से प्रसन्न क्यों हो?
आप दोनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये भुजाएं ही मेरे लिए मेरा बंधन थी, इनके कटने से ही मुझे अपने श्राप का स्मरण हो आया।
श्राप? कैसा श्राप?
पूर्व जन्म में अत्यंत पराक्रमी और रूपवान था। एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे यह भयानक रूप मिला। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि श्री राम ही तुम्हारी इन भुजाओं को काट कर तुम्हारे शरीर को जलाएंगे, तभी तुम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होगे। इसीलिए आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं।
भैया, इस कबंद को भी आप मुक्ति दे दीजिए,
इसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी।
कबंद के शरीर को जैसे ही श्री राम ने अग्नि को समर्पित किया, वो अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हुआ।
परम प्रभु श्री राम, इस उपकार के लिए मैं आपका ऋणी हूं। आपसे निवेदन है कि आप ऋषिमुख पर्वत जाकर सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ही आपके इस कार्य में आपके सहायक सिद्ध होंगे। प्रणाम प्रभु।
फिर श्री राम ने उसे जीवन का महत्वपूर्ण उपदेश देकर उसके कल्याण की कामना की और कबंध ने सीधे दिव्य लोक को प्रस्थान किया।
कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गायु गगन अपनी गति पाई।
भैया वो देखिए सामने धुआं उठ रहा है, लगता है कोई आश्रम है जहां पर हवन हो रहा है।
हाँ लक्ष्मण चलो आज रात इसी आश्रम में विश्राम करेंगे।
भैया इस आश्रम के द्वार पर ये स्त्री कौन खड़ी है?
लक्ष्मण शरीर से तो लग रहा है कि इसने तपस्या का व्रत ले रखा है।
तभी तो उसका शरीर तप में जलकर आधा हो गया है और बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं।
अब यहाँ आ ही गए हैं तो चलकर पूछ लेते हैं, रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी हो जाएगी। प्रणाम माते।
मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं माते?
और फिर श्री राम को अपनी ऐसी भक्त के दर्शन हुए जिसकी आज तक कोई बराबरी नहीं कर सका। वो आश्रम की साधारण सी सेविका ही तो थी जिसे ऋषिवर ने अपने आश्रम में स्थान दिया था, पर अपनी अनोखी राम भक्ति से उसका नाम बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी आगे निकल गया। राम की ऐसी अनन्य भक्त का नाम था शबरी।
ताही गति जब देखी राम, शीश नवा कर किए प्रणाम। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। प्रभु वचन जी भय मन धाम।
रामायण मैं काल हूं। देवी सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण कबंद के बताए रास्ते पर ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, पर इसके साथ श्री राम के बहुत से सामाजिक दायित्व भी थे जिन्हें पूरा करना भी आवश्यक था, और ये तो वो विधि का विधान कहिए या स्वयं श्री राम की योजना कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत से कार्य अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ही समाप्त किए। इसी क्रम में वे शबरी के आश्रम में भी पहुंचे जहां शबरी उन्हीं की प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता रही थी।
माता ये किस महर्षि का आश्रम है?
बेटा ये महर्षि मतंग का आश्रम है, मैं इसी आश्रम की सेविका शबरी हूं। किंतु तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो?
हम लोग वनवासी हैं माता, राक्षसों ने हमें भारी संकट में डाल दिया है, आज की रात हम यहीं विश्राम करना चाहते हैं।
अतिथियों के लिए यह आश्रम सदा खुला रहता है, तुम दोनों बिना संकोच यहां विश्राम कर सकते हो।
परंतु माते पहले हम महर्षि के दर्शन करना चाहेंगे।
आप चुप क्यों हो गई माते?
उनकी याद आ गई बेटे, महर्षि अब दुनिया में नहीं है, उनने मुझे मान सम्मान दिया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। महर्षि ने मुझे अछूत होते भी अपने आश्रम में स्थान दिया, उनके जैसा महर्षि कोई नहीं हो सकता बेटे, कोई नहीं हो सकता।
किंतु माते आश्रम से होम का धुआं निकल रहा है, महर्षि नहीं है तो ये हवन यज्ञ कौन कर रहा है?
ये हवन उनके प्रभाव से अभी तक चल रहा है, यहाँ तक कि बिना पानी दिए आश्रम के सारे वृक्ष सदा से हरे भरे हैं।
आप इस आश्रम में क्या करती हैं माते?
मैं मैं अपनी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही हूँ।
तो कब पूरी होगी तपस्या आपकी?
महर्षि ने कहा था कि अयोध्या कुमार श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद ही मेरी तपस्या पूरी होगी बेटे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में दिन बिता रही हूँ यहाँ पर।
क्या आप राम लक्ष्मण को पहचानती हैं माते?
पहचानती तो नहीं पुत्र, किंतु किंतु उनकी कृपा हुई तो अवश्य पहचान लूंगी।
किंतु अभी तक तो नहीं पहचान पाई माते।
क्या तुम दोनों?
हाँ माते, ये भैया राम हैं और मैं लक्ष्मण।
प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, जिनकी प्रतीक्षा मैंने जीवन बिता दिया उन्हें अपने सामने देखकर मैं पहचान नहीं सकी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, हे प्रभु राम मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सुमित्रनंदन। आप दोनों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया।
आपका व्रत तो पहले ही सफल हो गया था माते, आपके समान भोले भाले प्राणियों का व्रत प्रभु अवश्य पूर्ण करते हैं।
जब साक्षात प्रभु हमारे समक्ष उपस्थित हुए तब व्रत तो पूरा हो गई थी प्रभु। आप लोग यही विश्राम करें, मैं आप लोगों के लिए फलाहार लेकर आती हूँ।
आप कष्ट न करें माते, अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है।
नहीं प्रभु नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, शबरी की अतिथि भूखे नहीं जा सकते, और आप दोनों तो हमारे साक्षात भगवान बनकर आए, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी प्रभु, मैं ऐसे नहीं जाना दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जी भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जाता मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई।
श्री राम और लक्ष्मण के लाख मना करने के बाद भी भीलनी शबरी ने राम और लक्ष्मण का उचित सत्कार किया। अपनी मृत्यु के पूर्व महर्षि मतंग ने शबरी को श्री राम के आने का साफ संकेत दिया था, और आज जब वो शुभ दिन आया तो शबरी सेवा का कोई अवसर खोना नहीं चाहती थी।
यह है हमारी सोने की लंका, अपार धन संपदा से भरी पूरी लंका। ध्यान से देखो सीता, राजमहल की ये दीवारें भी सोने की हैं और महल के रत्नजटित खंभे भी सोने के। महल के चारों ओर वो जो उपवन देख रही हो, ऐसे उपवन अयोध्या तो क्या देवराज इंद्र के महल में भी नहीं है। आंखें खोलो सीता, हमारी लंका देखो, दिग्विजयी दशकंधार की लंका। इसे देखकर तुम भूल जाओगी अपने उस तुच्छ वनवासी पति को।
तुम नहीं जानते लंकेश कि मेरे लिए मेरे पति ही सारे विश्व की धन संपदा है, मेरा वैभव और मन की शांति है। मुझे इस झूठे वैभव का लोभ मत दो, मैं इसे देखना तक नहीं चाहती।
तुम अभी भी भ्रमित हो सीता, तुम जीवन का सच नहीं जानती या न जानने का ढोंग कर रही हो। यदि तुम ये सोचती हो कि रावण तुम्हारी दशा पर पिघल जाएगा तो तुम भूल कर रही हो। त्रिजटा।
आदेश दे लंकेश।
त्रिजटा ले जाओ इसे अशोक वाटिका में, समझाओ इसे कि यदि धरती पर कोई स्वर्ग है तो यही लंकेश्वर के चरणों में है, समझाओ इसे कि जीवन आनंद है और ये आनंद केवल लंकापुरी में ही संभव है।
ठीक है लंकेश, चलो देवी।
देवी मत कहो इसे, ये देवी नहीं सीता है, इसकी आंखों के सामने शूर्पणखा का अपमान हुआ जिसे रोकने की चेष्टा भी नहीं की इसने। जाओ मेरी दृष्टि से दूर ले जाओ इसे।
लंकापति रावण ने सीता को अपने राज्य के सबसे सुरक्षित क्षेत्र अशोक वाटिका में भेज दिया और उनकी देखरेख के लिए त्रिजटा के साथ कई राक्षसियां नियुक्त कर दी। इधर शबरी के आश्रम में पहुंचे श्री राम को देखकर शबरी को लगा कि जैसे उसे आठों सिद्धियां और नमो निधियां एक साथ मिल गई।
अरे ये क्या कर रही हैं आप?
कुछ नहीं प्रभु, अपने प्रभु के पैर धो रही हूँ। हमारे प्रभु थक गए होंगे ना, उनकी थकान कर जाएगी। ये लीजिए प्रभु, ये फल ग्रहण कीजिए।
भैया ये क्या, आप इन फलों को खाएंगे? इन्होंने एक एक फल चक्कर जूठे किए हैं।
ये फल नहीं है लक्ष्मण, माता का प्रेम है। इन फलों का अपमान माता के प्रेम का अपमान है। झूठा करके इन्होंने इन फलों को प्रभु का प्रसाद बना दिया है। माता, ऐसे मीठे फल तो मैंने सारे जीवन में नहीं खाए।
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी।
प्रभु ये तो आपका प्रेम है कि आपने एक नीच जाति की स्त्री के हाथों से फल ग्रहण किए, नहीं तो लोग तो हमसे दूर ही भाग जाते हैं। इसलिए तो कहती हूँ कि आप साक्षात ईश्वर हैं।
माते मैं तो एक ही संबंध जानता हूँ और वो है भक्ति का। जहां भक्ति नहीं वहां मैं नहीं, क्योंकि जाति पाति कुल धर्म धन बल कुटुंब गुण और बुद्धि इन सब के होने पर भी भक्ति बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे बिना जल के बादल।
मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई, आपकी बहुत कृपा है।
माते आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मुझे सीता कहाँ मिलेगी।
प्रभु आप उचित दिशा में हैं, पंपा सरोवर निकट ही है, आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। ये इस तपस्वी शबरी का अंतर्मन बोल रहा है प्रभु, और प्रभु प्रभु आपके दर्शन से मेरा भी मनोरथ पूरा हो गया। अब मैं अपने शरीर से मुक्त होकर अपने गुरु का धाम जा सकती हूँ। प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं मुक्त हो गई प्रभु, अब मैं अपने गुरु के धाम जा सकती हूँ। धन्य प्रभु, धन्य आप, धन्य।
श्री राम भी कहां सोच सकते थे कि एक साधारण सी स्त्री शबरी उनके इतने काम आ सकती है। प्रभु की लीला अनंत है। जो प्रभु स्वयं सारे संसार को मार्ग दिखाते हैं, उन्हें शबरी ने मार्ग दिखाया। वो शबरी जो तत्व ज्ञानी नहीं थी, जो आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को भी नहीं जानती थी, यदि वो किसी चीज को जानती थी तो वो था प्रेम। और हमारे श्री राम तो बस प्रेम के भूखे हैं। श्री राम के लिए उसका अनंत प्रेम।
नीच जाति की नारी शबरी चख चख मीठे ही फल दे, चुनी चुनी प्रभु आशीष दे, चुनी चुनी प्रभु आशीष दे। और प्रेम सहित फल ले